أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر آپ سے خاص کروں گا آج بڑا سارے ثواب کی مجلس سکھی گئی ہے وہ جعفر حسین سید جعفر حسین زیدی صاحب ان کے صاحبزادے سید سپتین جعفر زیدی اور اسی خاندان کے دیگر مرحومین کو اپنے مرحومین اور تمام شہدا کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات نہیں چلوا دیجیے محمد آل محمد پر اس سے بہتر انداز میں ایک بار اور پڑھتا ہوں بات ہو رہی ہے مقام و منزلت جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ جو زبان بیان کرنے سے قاصر ہے قلم بھی لکھنے سے عاجز ہے نہ کوئی بیان کر سکتا ہے نہ کوئی لکھ سکتا ہے اور سننے والوں کی بھی عمر اتنی نہیں کہ وہ عظمت اور فضائل سن سکے یہ میں مبالغہ نہیں کر رہا میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سینکڑوں روایات یہ صرف جو میں روایات آپ کے سامنے پیش کیے جا رہا ہوں پانچ دن یہ بھی کمے میں دیے آج ایک جو دو روایتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا آج پھر میں کاغذ کا سہارا اس لیے لوں گا کہ لفظ ب لفظ وہ آپ کے کانوں تک کوئی لفظ آگے پیچھے نہ ہونے پائے اس خوف سے میں روایت کو لکھ کر لایا ہوں اور حوالے میں آپ کو مسلسل دے رہا ہوں کہ کہیں ان حوالوں کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں موجود ہیں وہ سارے حوالے اسی کتاب خانے میں موجود ملیں گے بہار الانوار یہاں مل جائے گی مصباح الانوار یہاں پر مل جائے گی بشارت المصطفیٰ یہاں پر مل جائے گی وسائل الشیعہ یہاں پر مل جائے گی آپ کو القطرۃ من فضائل اہل بیت یہاں پر مل جائے گی تمام اور میں نے کیا عرض کیا درجنوں نہیں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت میں سینکڑوں کتنی روایتیں سینکڑوں کتنوں کو رد کرو گے تم اچھا مشکل یہ ہے ان سب کی کہ جو میں نے کہا پہلے دن سے کہ مشکل میں یہ پھنس گئے اس لیے پھنس گئے کہ یہ وہ واحد ہستی ہے جس کے بارے میں 13 اماموں نے روایتیں کہی ہیں 13 معصومی نماز اماموں نے 13 معصومی نے 12 امام اور خود پیغمبر خدیجہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک نے اپنی جدہ طاہرہ کا ہر ایک نے ذکر کیا ہر ایک نے ذکر کیونکہ جانتے تھے کہ ایسے لوگ آئیں گے جو مقام فاطمہ کو کم کرنے کی کوشش یعنی صرف رسول کے پیچھے نہیں پڑے صرف مولا کائنات کے پیچھے نہیں پڑے مقام فاطمہ الزہرا کو کم کرنے کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کیا دنیا نے گڑھا کہ نہیں گڑھا ہے نا بیٹیوں کا افسانہ بھی گڑھا ارے بھائی چاہے وہ لے پالک تھی چاہے وہ جناب خدیجہ کی بہن کی تھی ٹھیک ہے نا ان کی بہن کی بچیاں تھی ان کو اپنی بچیوں کی طرح پالا جناب خدیجہ نے سیدھی دو اور دو چار والی بات ہے کہ آپ کہتے چلو چار تھی تین تھی جو بھی تھی ہمیں اسے بحث نہیں بحث تو صرف اتنی سی ہے کہ بھائی کسی کی آل اولاد کا تذکرہ تو ہوگا کہیں تو ہوگا بھائی فرض کر لو اگر کسی کے عقد میں چلے گئے دو تو ان کی اولادیں تو تھیں تو کہیں تو ہوتی تو کیا اتنا منصب کافی نہیں کہ اگر جو بنا کے لائے گئے ان میں بھی کسی کی اولاد کا آج نہیں پتا معلوم ہے تو اتنا فرق تو طے ہو گیا نا کہ جیسے انبیاء میں سارے نبی ایک طرف پیغمبر ختمی مرتبت اسی طرح خواتین میں ساری خواتین چاہے آپ بیٹیاں بنا کر لائیے یا بیٹیاں بنا کر نہ لائیے میں ان بیٹیوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا, میں تو ان خواتین کی بات کر رہا ہوں جنہیں قرآن نے عظمت دی. جناب آسیہ سلام اللہ علیہا, جناب حاجرہ سلام اللہ علیہا, جناب حوا سلام اللہ علیہا, جناب سارہ سلام اللہ علیہا, جناب مریم سلام اللہ علیہا, یہ جتنی بھی خواتین ہیں میں تو ان کی بات کر رہا ہوں کہ ان میں بھی کوئی جناب فاطمہ زہرا کا ہمسر نہیں ہے. وہ زندہ ہیں, وہ سب سلام اللہ علیہن اجمعین. میں ان سب کی کسی کو معاذ اللہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ کسی کا ڈگریڈ تو, لیکن یہ بتا رہا ہوں کہ جو درجہ بندی ہے, جو فضیلت کے باب میں اللہ نے درجہ بندی رکھی ہے انبیاء میں, رسولوں میں, پیغمبروں میں, خواتین میں, حتیٰ کہ ائمہ میں, ائمہ طاہرین میں درجہ بندی رکھی ہے کہ نہیں رکھی ہے؟ خدا کے بندوں رکھی ہے, مت ڈرو, میں کہہ رہا ہوں نا رکھی ہے کہ ائمہ میں بھی, ائمہ طاہرین میں ہے, نہیں مت گھبرائیں. میں بھی ابھی ایک جملہ کہوں گا آپ کی سمجھ میں آ جائے گی بات. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ائمہ طاہرین میں بھی درجہ بندی ہے. کیسے درجہ بندی ہے؟ لیجیے حدیث سن لیا, اگر کسی کو شک ہو تو آگے انکار کر لے, بڑے سے بڑے عالم کو پکڑ کے لیا ہے, کسی مرجع سے پوچھ لے, اگر ہاں ویسی مرجع کے انکار کرنے والا تو خود ہی اپنی طرف سے گھڑتا رہے گا, جو مرضی گھڑتا رہے, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ, حسن اور حسین جوانان جنت کے امام ہے نا, امام ہے, معصوم ہے. لیکن جو بات ختم نہیں ہوئی, حدیث ختم نہیں ہوئی. الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ و ابوہما افضلہما, سب امام ہیں, سب معصوم ہیں, لیکن جو مقام علی کا ہے ان دونوں سے ان کا بابا علی افضل ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا اب دلیل قائم ہو گئی. اب میرا جملہ سمجھ میں آ گیا؟ ہاں. میں نے کہا کوئی مس یوز کرنے جا کے, خیر مس یوز کرنے والے تو اب بھی کر لیں گے, وہ بڑے فنکار ہیں, ان کو میں پہچانتا ہوں, وہ بڑے فنکار ہیں, وہ یہ سب اگلا پچھلا کاٹ دیں گے, کلپ میں سے خالی وہ ایک جملہ نکالیں گے کہ تمام ائمہ برابر نہیں کہیں گے. ہو ہو, یہ دیکھیں حضور فرما رہے ہیں نا, مولانا محمد اور فتنہ محمد آخرنا محمد, اور یہ مولانا بیٹھ کے, یہاں پہ مولوی بیٹھ کے کیا کہہ رہا ہے کہ سب امام برابر. حالانکہ وہی جو یہ حدیث فرما رہا ہے نا اللہ کا رسول, انا اولنا محمد و انا اوسطنا محمد و انا آخرنا محمد و انا کلنا محمد, وہ بھی علی کی ولایت کے اعلان کے ساتھ ساتھ یہ ضرور کہتا ہے کہ الا لا نبی من بعد, بس سب اختیار ہیں علی کو مگر میرے بعد کوئی نبی. معلوم ہو گیا, یہ ان کی تسلی کے لیے جواب کو میں نے مکمل کر دیا, مگر ان کی تسلی ہونے والی ہے نہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آئی کہ تیرا معصومین مسلسل مسلسل کیوں اتنی تکرار کر رہے ہیں فاطمہ زہرا کے مقام پہ؟ میں نے عرض کر دیا, محور ہے, مرکز ہے, دائرے کے جیسے مرکز ہوتا ہے نا, مثال کئی بار میں دے چکا ہوں, پرکار, اس لیے اس نے پرکار کا لفظ استعمال کیا علامہ اقبال نے کہ پرکار کے کیوں یہ مرکز نہ ہو تو دائرے نہیں بنتے. دائرے تو آپ بچ گئے نا, کوئی چھوٹے سے چھوٹا دائرہ ہو یا بڑے سے بڑا دائرہ, مرکز کے بغیر بنے گا؟ جب تک مرکز پہ نہیں رکھا جائے دائرہ نہیں بنتا, اور جب آپ دائرہ بنانے کے بعد پرکار ہٹا لیجئے, مرکز کہاں نظر آ رہا ہے؟ نظر آ رہا ہے نہیں نظر آ رہا نا. بس ائمہ طاہرین کے درمیان میں یہ محجوب, یہ مستور, اس بیوی کی ذات ایسے ہی ہے کہ جو مباہلے میں پوشیدہ ہے مگر اس کے بغیر دائرہ مکمل نہیں ہو رہا. آئیے اب آئیے زیارت, زیارت. کل یہی بات چل رہی تھی نا, مجھے یاد ہے, مکمل نہیں ہوئی تھی بات. میں نے کہا کل, میں نے خود ہی کہا تھا کہ ابھی مکمل نہیں ہوئی بات, آج مکمل کروں گا کہ زیارت کیا ہے. हमारे साथ भी कुछ पढ़ते थे, वहां पढ़ते थे और मगर ज्यारत नहीं पढ़ते थे। कलेश की दलील कहां है? ज्यारत की दलील कहां है? पता नहीं कहां से अजीबोगरीब किस्म के ख्याल आते हैं। इसकी दलील कहां, उसकी दलील कहां, उसकी दलील कहां? तो आज वहां तो दलीलें देने वाले बहुत थे, देते भी थे, मगर फिर भी मैंने कहा ना उन लोगों की तसल्ली, ये जो इफरात और तफरीत में बैठे हुए ना दो हमारे यहां तबके हैं, समझ गए दोनों, एक है उस सिरे पे, एक है उस सिरे पे, या बिल्कुल हर चीज का इनकार कर रहा है या हर वो चीज शामिल कर रहा है जिसका दीन से कोई ताल्लुक ही नहीं है ना। दो दो किस्म के लोग जो आज हमारे लिए मुश्किलात का बाइस बन रहे हैं, तशय्यो के लिए पूरी दुनिया में मुश्किलात का बाइस बन रहे हैं, इफरात और तफरीत दो इंतहाओं ने हमें मुसीबत में डाला। एक उस इंतहा पे चला गया कि हर चीज का इनकार कर बैठा, और एक इस इंतहा पे चला गया कि जो नहीं है उसको भी दीन बना दिया, जो नहीं है उसको भी शामिल किया दे रहा, और ये चाहता भी, और चाहे दोनों में शिद्दत पसंदी इतनी है कि दलील दे या ना दे आप उनकी बात माने, नहीं मानेंगे तो आपको दीन से बाहर कर देंगे। ऐसे ही ना आजमा के देख लीजिएगा कि दोनों में इतनी शिद्दत पसंदी है कि आपने जिसकी बात ना मानी उसने आपको तशय्यों से, तो अभी नहीं, और उनमें क्या फर्क रह गया? वो गालिबान और जालिबान और जितने भी हैं उनका भी यही हिसाब है कि उनकी मानो दलील हो या ना उनकी मानो, नहीं माना तो दीन छगारी। यहां भी यही मुश्किल आ गई कि दलील वलील से कोई बात नहीं, आप मान रहे हो कि नहीं मान रहे? नहीं मान रहे तशय्यों से खारिज। ठीक है, तो आज आपके इत्मीनान के लिए कम से कम जो यहां बैठा है इत्मीनान से नमाज के बाद भी ज्यारत पढ़ो, चाहे मुख्तसर सी पढ़ो, है ना? नहीं आती मुख्तसर तो आती है, अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रसूलुल्लाह तो कहना तो आता है ना, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू, आ गए ना। आज इसकी दलील आपको देने जा रहे हैं कि ज्यारत कहां से आई, क्यों आई, किसने इसको लाजिम किया। ठीक है ना, ताकि कहीं कभी कोई आपको कोई बड़े बड़े बुकरात है ना ब्रेन वॉशिंग करने के लिए तैयार बैठे हैं बच्चों की नौजवानों की, उनको ये एकदम ये अजीब अजीब किस्म की बातें बताते हैं, वो बच्चे बेचारे नादानगी में, नहीं नहीं साहब ये बिल्कुल कहां है दीन में, कहां ये सब चीजें लिया है, जो है उसको मान नहीं रहे, जो नहीं है उसको डाले दे रहे हैं, एक अजीब सी मुश्किल में डाल दिया पूरी कौम को। लेकिन आप इत्मीनान रखें, एक बात मैं आपको बताऊं, चले पहले आपको तसल्ली दे दूं, जब भी हम लोगों से मिलते हैं ना परेशान नजर आते लोग कि क्या होगा, इतने करो बन गए, इतने धड़े बन गए, होगी हुए हो गया। मैं हर एक को आप अच्छा एक तो आप मुझे बताइए कि मैं खैर यहाँ भी 24 साल तो हो गए मुझे पंजाब में पढ़ते हुए, है ना, अच्छा बल्कि नहीं पंजाब में पढ़ते हुए तो 28-29 साल हो गए, 30 साल लाहौर में पढ़ते हुए 24 साल हो गए, 96 से 2020 शुरू हो गया, 24 साल मेरे खर्च हो गए, ये बच्चे माशाल्लाह एक नस्ल पूरी जवान हो गई और एक और नस्ल अब पैदा होकर मेरी मजालिस में आ रही है। मैं चैलेंज कर रहा हूं यहां से कि मेरी एक मजलिस कोई नहीं निकाल सकता जिसमें मैंने कोई मायूसी की बात की, सब मौजूद है सारे रिकॉर्ड यहां भी कराची में हर जगह, कभी मायूसी का जुमला मैंने अपनी कौम को नहीं कहा, क्यों नहीं कहा मैं आपको बताने जा रहा हूं। परेशान होते ना सब कि क्या होगा, ये धड़ेबंदी वो धड़ेबंदी वो, खुदा के बंदो ये एक एजाज है, एक मोजिजा है तशय्यो का, और ये भी बताऊंगा कि किसकी दुआ की वजह से है, ये भी बताओ कि किसकी दुआ की वजह से ये एजाज है। दुनिया कितनी साजिशें कर ले, करोड़ों खर्च करे, अरबों खर्च करे, सब कुछ खर्च करे, एक वाकया ऐसा होता है कि फिर ये फातिमा जहरा की औलाद के चाहने वाले एक जगह जमा हो जाते हैं, एक बार वो अपने ख्याल में हमें नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें ये मालूम ही नहीं कि वो हमारा नुकसान नहीं होता, अल्लाह ने उस नुकसान के पीछे बहुत बड़ा फायदा रखा होता है। अभी चंद साल तक कितना खर्च किया हमें तोड़ने के लिए, हमारा एक सरदार जामे शहादत नोश करता है, करोड़ों इंसानों को मुत्तहिद कर देता है, किया कि नहीं किया, किया नहीं किया, बस याद रखो कि जो मुजाहिद है ना ये जिंदा जितना खतरनाक होता है मरने के बाद उससे हजार गुना खतरनाक बन जाता है। कौन मुजाहिद? जो हुसैन के रास्ते में और आले जहरा के रास्ते में अपनी जाने दे देते हैं। क्यों? ये दलील होती है इस बात की कि करबला में जब कोई नहीं खत्म हुआ तुम कैसे खत्म हो जाओगे? हुसैन ना खुद खत्म हुआ ना अपने नाम पर मरने वालों को खत्म होने देता, याद रखना। तो होता है ना ऐसा, ज्यादा परेशान मत हो, ये जितनी साजिशें कर रहे हैं इनके पास भी सब कुछ है, हमारे पास भी सब कुछ है, इनके पीछे भी खुफिया ताकतें है ना, नजर नहीं आ रही, ऐसी ताकतें हैं ना, ऐसे हाथ हैं जो नजर नहीं आ रहे, इनके पीछे भी गैबी ताकतें, हमारे पीछे भी गैबी ताकतें है ना, इनके पीछे भी खुफिया ताकतें, इनके पीछे भी गैबी हाथ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे, हम तो कल ही अर्ज कर चुके आपकी खिदमत में कि गैब पर ईमान ना हो तो मोमिन है ही नहीं, इसलिए इत्मीनान से बात करते हैं कि ये कितनी ही बड़ी ताकतें हो, भूख से ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं नहीं कह रहा, ये कुरान ने कहा युरीदूना युक्ज़नूर अल्लाह बेअफवाहिहिम, इनकी सारी साजिशों को कुरान ने भूख से ताबीर किया कि ये भूख से ज्यादा कुछ भी नहीं। क्यों? हम जिन पर ईमान रखते हैं वो गैबी ताकतें कौन सी है? एक इमाम ज़माना है और एक इमाम ज़माना को हमारा इमाम बनाने वाला अल्लाह है। अब इनसे बड़ी कोई ताकत है तो भाई लिया, मैं उसमें भरोसा कर लूंगा। मैं तो हमेशा यही कहता हूं मोमिन से कि घबराते किस लिए भाई, क्यों घबराते, काई की परेशानी है, अकीदा तो मजबूत रखो। जब वो मदद करने वाले की मदद नहीं कर रहे, कौन है इस वक्त दुनिया में तुम्हारा हामी? सारी ताकत दुश्मन है तुम्हारी, उसके बावजूद कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यकीन रखो इस बात का, खुदा की कसम यकीन रखो, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्यों नहीं बिगाड़ सकते? जो ताकत हमारे पास है इनके पास नहीं है। हमारे पास है करबला, इनके पास नहीं है। और जिसके पास करबला हो, ये शैतान बुजुर्ग हमें शिकस्त देगा है? ये इबलीस और उसके चेले हमें शिकस्त देंगे। ये सारी दुनिया मिलकर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्यों? हम वो हैं जो मर के ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। देखिए ना कासिम सुलेमानी का, जो नहीं जानता था वो भी जान गया, पूरी दुनिया जान गई कि कौन था कासिम सुलेमानी। ये एक कासिम सुलेमानी था ना, इसकी शहादत ने लाखों बच्चों के दिलों में कासिम सुलेमानी बनने का जज्बा पैदा कर दिया। अब मैं एक रिवायत, इतने दो मिनट की मुझे इजाजत दे दीजिए, ताकि मैं चाह रहा हूं कि लफ्ज़ बा लफ्ज़ आप तक पहुंच जाए और कोई मेरी सिफ़त लिसानी का मुझे कोई खदशा ना रहे। ये हदीस हवाला आपको दे दें, मैंने पहले हवाले दे दिए, सारी किताबों की जरूरत नहीं, किसी को ज्यादा चाहिए होंगे तो मैं उसको यहां भेजूंगा कि जाओ भैया निकाल लो यहां से, स्वामी जल्दी निकाल लो बिहारुल अनवार की, उसमें भी निकालो, खैर उलमा खुद हिदायत कर देंगे कि हाँ भाई यहां यहां है ये रिवायत निकालिए। अब सुनिए, इन अल्लाह قد وكل بفاطمة رعيلا من الملائكة يحفظونها من بين يديها ومن خلفها وعن يمينها وعن يسارها وهم معها في حياتها وعند قبرها يكسرون الصلاة عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها. یہ پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. अभी मैंने लफ्ज़-ब-लफ्ज़ पहुंचा दिया मतन आपको, ना ताकि कोई उसमें कोई गुंजाइश ना रहे, ये रिकॉर्ड हो गया मतन जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। अब सुनिए, फरमाते हुजूर अल्लाह का हुजूर फरमाते, बेशक अपनी बेटी के लिए फरमा रहे हैं तो रसूल का मकाम क्या होगा? अभी इसके बाद बता देंगे रसूल का मकाम भी। जिन लोगों को शक है ना, उन शक्काकीन के शकूक को दूर करना है, दूर हो या ना हो मेरा तो काम है ना, शकूक और शुबहात को दूर करना लोगों के, अब दूर हो या ना वो उनके अपने दिल की कैफियत है। अरे अमदन ये काम कर रहा है तो कभी भी शक दूर नहीं होगा, शुभा दूर नहीं होगा अगर अमदन ये काम कर रहा है। लेकिन नहीं, अगर गलत फहमी की बिना पे जैसे हमारे आम मोमिनीन होते बेचारे, उनको बहका दिया जाता है, उनका शक दूर हो जाता है, वो जानते कि नहीं बात समझ में आ गई बिल्कुल। अब आइए तर्जुमा आपके सामने, बेशक हुजूर फरमाते अपनी बच्ची के बारे में, बेटी के बारे में, अल्लाह ने मलाइका का एक ग्रोह एक जमात फातिमा के साथ रखी हुई, फातिमा के साथ रखी, मलाइका की एक जमात एक ग्रोह, जिनको नहीं मालूम ना मकाम अज़मत फातिमा क्या है, दो तीन रिवायतें हैं और क्या है, उनके लिए पढ़ रहा हूं चार दिन से और 40 दिन मजीद पढ़ सकता हूं अभी, इतनी रिवायत है। हाँ इंशाल्लाह जिंदगी की शर्त है, पढ़ सकता हूं आप इत्मीनान रखें। अभी तक मैंने कोई रिवायत की तकरार तो नहीं की ना इन चार दिनों में, कल तक भी नहीं होगी, इत्मीनान रखें। उसके बावजूद बहुत रिवायतें पड़ी हुई है, बहुत रिवायतें बाकी। बेशक अल्लाह ने मलाइका की एक जमात को, एक गिरोह को फातिमा के साथ मुकर्रर रखा, जो उन्हें सामने से, अकब से, दाएं से, बाएं से अपनी हिफाजत में रखे। याहफिज़ूना, लफ्ज़ याहफिज़ूना, अपनी हिफाजत में, अपने हिसार में रखते हैं, सामने से, खल्फ से, जमीन से, यसार से नहीं, दाएं से, बाएं से। बहुम माहा की हयातिहा, असल बात यहां पे है, दाएं बाएं से बात में रखते हैं। ये गरोह फरिश्तगान, ये मलाइका की जमात, ये मलाइका का गरोह आपकी हयात में भी आपके साथ होगा, और इस दुनिया से रुखसत होने के बाद भी आपकी कब्र मुताहर के गिर्द होगा। यहां मुझे हैरत होती है कि इकबाल ने कहां तक पढ़ा, कहां तक पढ़ा इकबाल ने, इकबाल ने ये रिवायत पढ़ी है, ये रिवायत ना पढ़ता तो कभी भी ये शेर ना कहता कि रिश्ते आईने हम जंजीरे पास, पासे फरमाने जनाबे मुस्तफा, वरना गिरदे तुरबतश गर्दी दमी सजदे हमरखा के उपासी दमी। समझ आ गया, कई बार पढ़ चुका हूं, जब पढ़ता हूं मुझे खुद एक नया कैफियत मुझ पे कैफ महसूस करता हूं। इकबाल ने रिवायत पढ़ी है कि ये आईने हम, ये जो रिश्ता है, ये जो है ना अल्लाह के दीन का कानून, ये मेरे पैरों की जंजीर बन गया है, रसूल हक का फरमान मेरे पैरों की जंजीर बन गया, वरना मैं क्या करता, वरना मैं तुरबत कब्र फातिमा का तवाफ करता रहता, वरना गिरदे तुरबतश गर्दी दमी तवाफ करता रहता, सजदे हाबर खा के उपाशी दमी और उसकी कब्र पे सजदे बरसाता रहता। समझ में आ गई बात, ये रिवायत जो आपके सामने पढ़ रहा हूं कि फरिश्तों का क्या काम है, सिर्फ हयात जाहिरी में नहीं, या आपके इस दुनिया से रुखसत होने के बाद आपकी कब्र का तवाफ कर रहे हैं फरिश्ते, मलाइका कब्र के गिर्द होंगे। और सुनिए आगे, आपकी आपके दुनिया से रुखसत होने के बाद भी आपके कब्र मुताहर के गिर्द होंगे। ये फातिमा की अजमत है, जिनको ये शुबा है कि ज्यादा मुबालिगा कर देते हो, मुगालता कर देते, तुम्हें मालूम ही क्या है, कुछ ही को कुछ मालूम ही नहीं। मैंने कहा ना, सारी जिंदगी पढ़ते रहो तो फातिमा के फजाइल खत्म नहीं होते, तो अली के फजाइल की बातों को तो छोड़ दो, तो तुम्हें क्या मालूम। लेकिन सुनो, फरमाते हैं कि अब आगे आगे कब्र मुताहर के गिर्द होंगे, और इन पर यानी फातिमा पर, हुजूर फरमा रहे कि फातिमा पर यानी मेरी बेटी पर, और इनके बाबा पर यानी मुझ पर, हुजूर फरमा रहे मुझ पर, और इन पर इनके बाबा पर, इनके शोहर पर, अपने से तारुफ नहीं करा रहे, यहां भी अल्लाह के रसूल। अब हदीसे किसा की अजमत समझ में आई, हम फातिमा तो बाबू हो बालो बदमो, वो एक जगह नहीं है, ये तुम्हें और दूसरी जगह बता रहा हूं कि जहां जहां बेटी के जरिए से दुरूद भिजवाया गया कि फातिमा पे दुरूद भेजते रहेंगे कयामत तक, वो फरिश्ते फातिमा के बाबा पर, फातिमा के शोहर पर, फातिमा के बच्चों पर दुरूद भेजते रहे। सलवात भेजिए, यक्सरूना सलाता, यक्सरूना सलाता का लफ्ज, कसरत से सलवात भेजते रहेंगे, किस किस पर, अलैहा फातिमा पर, वाला अबीहा उनके बाबा पर, उनके शोहर पर, और उनके बेटों पर सलवात भेजते रहेंगे कब्र पे कयामत तक। कितने फरिश्ते नहीं मालूम, कब तक कुछ नहीं मालूम। आगे सुनिए, बस जिस किसी ने भी हुजूर फरमाते, अब आइए जियारत के लिए इत्मीनान कल्ब के साथ जियारत करो, कल भी मैंने किया था, आज फिर अर्ज करता हूं, जिस किसी ने भी मेरे इस दुनिया से रुखसत होने के बाद मेरी जियारत की, गोया मेरी जिंदगी में मेरी जियारत, क्या मतलब ज्यारत करने का, मेरे जाने के बाद मेरी ज्यारत की यानी कब्र मुताहर की ज्यारत की, जाके सलाम किया, जैसे हमारे बिरादार कहते हैं सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह, हम अपने अंदाज में ज्यारत पढ़ते हैं, जो ज्यारत है ना ये, इसी को ज्यारत, और किसको ज्यारत कहते हैं भाई। हुजूर जो फरमा रहे हैं कि जिसने मेरे इस दुनिया से जाने के बाद मेरी ज्यारत की, गोया वो ऐसा है कि जैसे उसने, क्यों, एजाज देने के लिए, वरना बाद में आने वाले जमाने के लोग कहेंगे ना कि हमारा क्या कसूर था, परवरदिगार सबने जियारत की हुजूर की, हमें भी जियारत का शरफ मिलता तो हुजूर तसल्ली दे रहे हैं, अगर मेरी कब्र मुताहर की जियारत करोगे तो ऐसा ही है जैसे तुमने जिंदगी में मेरी जियारत की है। आइए आगे जुमला सुनिए, گویا زندگی میں میری زیارت کی، جس نے فاطمہ کی زیارت کی گویا میری زیارت کی، نہیں ہے نا سامنے، یعنی جانے کے بعد جس نے بھی جہاں سے بھی پڑھی، معلوم ہی نہیں کہا ہے قبر، کوئی مسئلہ نہیں، نیت کر کے زیارت پڑھو، بقی میں پڑھو، ریاض الجنہ میں پڑھو، روضہ رسول کے سامنے پڑھو، وہ نہیں پڑھنے دیتے، باہر جا کے پڑھو، وہاں بھی نہیں پڑھنے دیتے، دل میں پڑھو، وہاں نہیں پڑھنے دیتے، ہوٹل کے کمرے سے پڑھو، وہاں نہیں پڑھنے دیتے، یہاں پڑھنے میں کون سی پابندی ہے؟ جہاں سے بھی پڑھو گے وہ ایسے ہی ہے، گویا اس نے یعنی جناب فاطمہ الزہرہ کی زیارت پڑھنا کیسا ہے جیسے اس نے رسول خدا کی. ایک صلوات دیجیے محمد آل محمد پر، وہاں کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت، جس نے علی کی زیارت کی نجف چلا گیا، جس نے علی کی زیارت کی. یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ ظاہری حیات کی بات نہیں ہو رہی، کہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد، جس نے علی کی زیارت کی گویا اس نے فاطمہ کی زیارت کی. یہ حضور کی حدیث پڑھ رہا ہوں، گویا اس نے فاطمہ کی. اب سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد کا کیا مطلب ہے؟ کلنا محمد کا مطلب یہ ہے، فضیلتیں سب کی اپنی اپنی جگہ ہیں، رسول رسول ہے، علی علی ہے، فاطمہ فاطمہ ہے، اور حسن حسین. اب ایک اور دلیل دے دوں آپ کو کہ درجہ بندی ہے کہ نہیں ہے. ابھی تو میں نے صرف علی کے باپ میں بتایا، اب فاطمہ کے باپ میں سن لیجئے درجہ بندی، حسنین کی جنت کہاں ہے؟ کہاں ہے حسنین کی جنت؟ کہاں ہے حسنین کی جنت؟ فاطمہ کے قدموں میں. جب کوئی مقام فاطمہ کے بارے میں الٹی سیدھی بکواس کرتا ہے، دل تو چاہتا ہے کہ بد دعا دے، لیکن پھر ڈر جاتا ہوں، خوف زدہ ہو جاتا ہوں کہ چھوڑو ایسا نہ کرو، بس ان کے لیے ہدایت کی دعا کرو، اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے دے، یہ وہ مظلوم بیٹی ہے اللہ کے رسول کی. معلوم ہے اس کا مقام؟ حسنین کی جنت اس کے قدموں میں. یہ ماں ہے حسن حسین کی، یہ ماں ہے زید ابو بکر کلثوم کی. ابھی مصائب میں بتاؤں گا کہ کس کس کی ماں ہے یہ فاطمہ، ابھی بتا رہا، لیکن سنی پہلے روایت پوری سنی. جس نے علی کی زیارت کی گویا فاطمہ کی زیارت کی، اور جس نے حسن حسین کی زیارت کی گویا علی کی زیارت کی. یعنی مت پریشان ہو، اگر ایک جگہ بھی زیارت کا موقع ملا، پروردگار عالم سب کی زیارت کا ثواب دے گا. اب آگے سنی، اور جس نے فرزندان حسنین کی زیارت کی گویا حسنین علیہ السلام کی زیارت کی. یعنی کسی بھی امام کے روزے پر گئے، کسی بھی امام کی زیارت کی تو ثواب ملے گا سب اماموں کی، امام حسن امام حسین کی زیارت کا. یہ ہے زیارت. اب بھی اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تو اپنے علاج کرائے، جسمانی تو دماغ کا علاج تو نہیں کہہ سکتا، روحانی علاج کرائے. یہ روح کا علاج بڑا ضروری ہوتا ہے. اہل بیت کی محبت کا تعلق دل سے ہے. عقل کی وادی میں جاؤ گے، کتابی کیڑے بنو گے تو تمہیں محبت نہیں ملے گی. یہ عشق کی وادیاں ہیں، یہ عرفان کی وادیاں ہیں. جب تک عشق و عرفان کی وادیوں میں نہیں جاؤ گے تمہیں نہیں معلوم. آؤ میں ایک اور حدیث تمہیں بتاتا ہوں، خلاصہ بتا رہا ہوں، حدیث بہت لمبی. کرابی آیا حضور کی خدمت میں، کہ حضور سوال کرنے کا حق ہے؟ کہا کیوں نہیں، حضور نے پر کیوں نہیں کرو سوال. کہ حضور ذرا سا سخت ہے، یعنی مہذب تھا لیکن اپنی تسلی چاہتا تھا. حضور ذرا سا سخت ہے سوال، جو تیرے دل میں ہے وہ سوال کر. کہ حضور یہ فرمائیے کہ جس آب و گل سے ہماری خلقت ہوئی ہے اسی آب و گل سے آپ، پھر آپ کو ہم پر برتری کیسی؟ دیکھیں سوال تو ہے نا، آج تک اسی سوال میں الجھی ہوئی ہے پبلک، ہے نا، کتنے فرقے اسی سوال میں الجھے ہوئے کہ ہمارے جیسے. ماشاء اللہ ہمارے یہاں بھی دو چار پیدا ہو گئے، دو چار ہی ہیں، زیادہ نہیں ہیں، ان کا بھی یہی مشکل ہے. آج تک ان کی یہ مشکل حل نہیں ہوئی. اب سنیے مشکل کیسے حل کی اللہ کے رسول نے. یہ القطرہ سے میں لایا ہوں روایت، اور ہے بہت طویل، مگر میں اس کو مختصر سا پڑھ رہا ہوں. بہت طویل روایت القطرہ، یہی پر کتاب موجود ہے، فارسی میں بھی ہے، اصل عربی میں ہے اور فارسی ترجمہ ہوا ہے اس کا. تو اس میں یہ حدیث لمبی ہے، میں خلاصہ کر رہا ہوں. فرماتے ہیں حضور کے ہاں تو سوال ہے بیٹھ جا جواب سن کر سن. جب کچھ بھی نہ تھا, اور یہ حدیث کی کتاب کا مصنف بتا چکا نا میں آپ کو کون ہے, علامہ آیت اللہ سید احمد منبسط. اور پھر انہی نے جو حوالے, یہ اس مصنف کا نام میں آپ سے لے رہا ہوں کہ مراجع الزام اس کتاب کے حوالے دیتے ہیں, حدیث نقل کرتے ہیں نا یہاں سے نقل کرتے ہیں کہ اس کو علامہ احمد منبسط نے اپنی کتاب قطرہ القطرہ من فضائل اہل البیت, یہ ان کی عربی میں کتاب ہے, اس کی میں آج دوسری جلد سے غالب نہیں, دوسری جلد میں لایا ہوں ساتھ, اب نظر ذہن میں نہیں آ رہا پہلے کی, تو دوسری جلد غالب دوسری جلد کی حدیث ہے, کل بتا بھی دیں گے آپ کو حدیث کا نمبر وغیرہ سب بتا دیں گے, لیکن ابھی حدیث کا خلاصہ سن لیجیے کیونکہ وہ وقت نہیں تھا میرے پاس تو میں پوری حدیث نہیں لا سکا, وقت نہیں تھا تو میں اس کو جلدی سے دیکھ لیا, خلاصہ دیکھ لیا اس کا, کل میں انشاءاللہ پوری حدیث لا دوں گا. حضور نے کہا سن, کچھ نہ تھا, اللہ نے کلام کیا اس سے ایک نور پیدا ہو, اس نور سے اللہ نے میری خلقت کی. ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں یہاں بیٹھ گئے, اور کل میں کہیں گے آپ کتاب لے آؤں گا ساتھ اپنے, اور میں نے عرض کر دیا کسی عام آدمی کی لکھی ہوئی نہیں ہے, اس کتاب کی ہے جس کے حوالے خود مجتہدین اس کتاب کے حوالوں سے حدیث نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جب کچھ نہ تھا اللہ نے سخن کیا یعنی کلام کیا, اس کلام سے میرے نور کو خلق کی, پھر کلام کیا, اچھا, اور پھر اس نور کو عرش سے بالا تر قرار دیا. اس کی عقلی دلیل بھی دوں گا آپ کو, عرش سے, کیونکہ کچھ بھی نہ تھا نا اس وقت جب خلق کیا تو ہر شے سے, یعنی عالمین سے, عرش بھی عالمین میں ہے نا تو عالمین سے بالا تر قرار دیا, ایسا ہی ہے نا, للعالمین نذیرا, عالمین کے لیے تو عالمین سے بالا تر یعنی عرش سے بالا, نورے میرے نور کو عرش سے بالا تر قرار دیا, پھر کلام کیا نور سے نور خلق ہوا, اس کلام سے جو نور خلق ہوا اس نور سے علی کو خلق کیا, اور علی کو تمام آسمانوں پر فضیلت دی. کیوں, یہ فرق کیوں رکھا, تاکہ محمد و علی کا فاصلہ برقرار رہے. سمجھ میں آگئی بات کہ مرتبہ کس کا بلند ہے, مانو نہ مانے کوئی وہ اس کی مرضی ہے, میں تو سیدھا سیدھا شیعت کا عقیدہ بتا رہا ہوں بھائی کہ اللہ محمد پھر علی, علی سب کچھ ہے کائنات میں لیکن محمد عربی کے بعد ہے, مانو یا نہ مانو کچھ بھی کہتے رہو, یہی عقیدہ ہے, یہی تشیع ہے, یہی شیعت ہے, اس کے علاوہ جو کہتا ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے لنترانیہ لے کر آتا ہے, اول تو پڑھا لکھا ہی نہیں ہوتا ہوں. وہ اکثر کو میں نے ایسے دیکھا جو الٹی سیدھی ہانک رہے ہوتے, جب ان کا بایو ڈیٹا دیکھا تو معلومات دینی تعلیم تو چھوڑ دی, وہ میٹرک بھی فیل ہے, بایو ڈیٹا تو چھوڑ دو میٹرک بھی, اور اگر کوئی ڈگری لکھ رہا ہے تو ڈگری پاس نہیں کی ہے, وہ دادا سے چلی آ رہی ہے, کاسٹ بن گئی ہے, کیا بن گئی ہے کاسٹ, سمجھتے ہیں نا, جیسے کاسٹ بن جاتی. اب میں کیا کیا مثالیں دوں آپ کو, یہاں پہ بیٹھ کے خواہ مخواہ میں لوگ میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں, سلوات بھیجیے محمد آل محمد پر, نہیں بلند آواز سے سلوات بھیجیے محمد آل محمد پر, تاکہ فاصلہ رہے, عرش سے بالا ہے محمد کی ذات, آسمانوں سے بالا ہے علی کی ذات, پھر کلام کیا حسن حسین کا نور خلق کیا, حسن حسین یہ مہتاب آفتاب یہ جتنے بھی شمس و قمر نجوم ان سب سے افضل, یہ لفظ بہ لفظ حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں, عرض کر رہا ہوں کہ حدیث بہت لمبی ہے طویل ہے, میں خلاصہ دو تین جملوں میں بیان کر رہا ہوں, کہ اس کے بعد نیچے تاریکی تھی, کیا تھی, تاریکی تھی, کہاں تک میرا ذہن پہنچا ہے مطلب کا میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ اس وقت میری کیفیت کیا ہے, بس پروردگار عالم ہماری آپ کی عبادت قبول کر لیں, بیوی راضی ہو جائیں پھر کچھ نہیں چاہیے, خدا کی قسم اس کی رضا میں, اللہ نے فرمایا نا, اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ اس کی رضا میں اللہ کی رضا ہے, یہ راضی ہو جائے حسین کی ماں راضی ہو جائے پوری دنیا ناراض ہو جائے کوئی پرواہ نہیں, کہ تاریکی تاریکی تھی, ملائکہ نے سخن کیا پروردگار یہ کیسی تاریکی ہے کیا ہے, تو اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ میرے نور میں سے, یہ نور معذرت, نور فاطمہ میں سے کچھ نور کو ایک قندیل کی شکل دو, सारा नूरे फातिमा नहीं, नूरे फातिमा में से कुछ नूर को कंदील की शक्ल दो, और जब उसको कंदील की शक्ल दी गई पूरा जहान मुनव्वर हो गया, पूरा जहान रोशन हो गया। अब तीन चार बातें मेरे जहन में आई, अल्लाह नूर समावात वल अर्ध मसल नूर ही कमिश्कात फीहा मिसबाह अल मिसबाह फी जुजाजत अज जुजाजतो कानहा कौकब दुर्री यूकद मिन शजरत मुबारकत जैतूनत ला शर्कियत वला गर्बिया। अब मैं क्या तर्जुमा करूं आपके सामने, आसमान और जमीन का नूर है अल्लाह की जात, उसके नूर की मिसाल है एक ताक, मसल नूर ही के मिश्कात फीहा मिसबाह, उसमें एक चराग है अल मिसबाह फी ज़ुजाजत, वो चराग है एक शीशे की कंदील में। इसलिए सूरह नूर की तशरीह में कहा जाता है कि ये आयत है फातिमा और उसके बाबा, फातिमा और उसके शौहर, फातिमा और उसके बेटों के लिए। रखिए रखिए, जिंदगी रही जिंदगी रही, ये बात भी कल मुकम्मल करूंगा, रखिए, भूल जाऊं तो याद दिला दीजिएगा, भूल जाऊं तो पर्ची देके याद दिलाइएगा क्या आपने सूरह नूर के हवाले से कुछ बात की थी, उसको मुकम्मल कीजिए। लेकिन इस वक्त अब वक्त नहीं है, वो बता रहा हूं। तो समझ में आया कि नूरे फातिमा से रोशन हुआ। आइए अब इसी किताब के पहली हदीस जनाबे फातिमा के बाप में, जिसमें मैं खत्म करूंगा बात को, पहली हदीस, और वो किससे नकल है, इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से। सिर्फ इशारा करेंगे, तफसील बाद में, क्योंकि मेरी नजर घड़ी पे बार बार पड़ रही है, वक्त हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा इशारा करेंगे। अल्लाह ने, किसी ने सवाल किया, शायद जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी का नाम है, बहुत ज़ईफी का आलम है, पांचवें इमाम का दौर देखा, सवाल किया कि आपकी जद्दे ताहिरा का नाम फातिमा क्यों है, आपका नाम फातिमा। फरमाते हैं इन अल्लाह अज़्ज़ा वजल सम्माह फातिमा, अल्लाह ताला ने इनका नाम फातिमा रखा। क्यों फातिमा रखा? खलकहा मिन नूर अज़मत, क्योंकि अल्लाह ने इस नूर फातिमा को अपनी अजमत के नूर से खल्क किया। जब ये नूर खल्क हुआ, मलाइका की निगाहें खीरा हो गई और वो पुकारे परवरदिगार ये कैसा नूर है, तो जवाब मिला, ये हदीस पढ़ रहा हूं, जवाब मिला हाजा नूर मिन नूरी व खलकतुहु मिन अज़मत, ये नूर मेरे नूर में से है और मैंने इसे अपने अजमत के नूर से खल्क किया है। सलावत भेज दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। और तफसीलात इंशाल्लाह जैसा मैंने अर्ज किया कल तफसीलात में देते, तो रिवायात भी हैं और जो आयात के लिए हमारे लिए मुहकम आयात जो मौजूद हैं उनके लिए सारी दलीलें मौजूद हैं हमारे पास कि नूर फातिमा क्या है, क्यों नूर कहे कर उन अनवार मुकद्दसा को सुलब आदम में रखा गया। आदम को सजदा कैसा सजदा है उन अनवार मुकद्दसा को, जानता था शैतान कि क्या मसला है, फजीलत का मसला है, बुलंदी का मसला है, आज तक वही मसला है। समझ गया, तेरे सिवा मैं किसी को सजदा नहीं करूंगा, क्यों जानता था मसला आदम का नहीं है, अगर मैंने आदम को सजदा कर दिया तो मैंने इन अनवार मुकद्दसा की फजीलत का इकरार कर लिया और ये मुझसे बड़े हो जाएंगे, वो मैं तो सबसे बड़ा हूं, नहीं? ये सबसे बड़ा होने की हरकत हर जमाने में रही, वो था सबसे बड़ा, उस वक्त भी वो सबसे बड़ा था, आज भी सबसे बड़ा शैतान मौजूद है ना, मैं सबसे बड़ा हूं और जुमले भी वही अदा करता है, मेरी ताकत सबसे ज्यादा है, मेरे पास असलहा सबसे ज्यादा है, जब इसने जुमले अदा किए ना मैंने शुक्र अदा किया अल्लाह का, यकीन माने अल्लाह का मैंने कहा शुक्र है माबूद तेरा, इसके मुंह से तूने वो जुमले निकलवा दिए जो फिरौन के हैं, फिरौन के जुमले थे ना मैं बड़ी ताकत, मैं तुम्हारा पालने वाला, मैं चाहूं तो तुम जिंदा रहोगे, मैं चाहूं तो तुम मर जाओगे, और पूरी दुनिया उसके रोब में आई हुई थी ना, आई हुई थी ना रोब में, आज भी रोब में आई हुई है दुनिया, रे भाई खाना पानी बंद हो जाएगा, कर्जा बंद हो जाएगा, बिजली बंद हो जाएगी, पेट्रोल नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगी, शक्कर नहीं मिलेगी, आटा नहीं मिलेगा, ऐसे ही है ना। ये सब वो दज्जाली निजाम, दज्जाली सिस्टम, के एक दिन में तुम्हारा सिस्टम बिठा देंगे। जो डर गए वो डर गए, और जो नहीं डरे खड़े रहना मैदान में। 40 साल से खड़े हैं, अब एक दो की और भी समझ में आ गया, वो भी खड़े हो गए। उन्होंने भी देखा कि जब एक कौम 40 साल से लड़ रही है और अमेरिका कुछ नहीं बिगाड़ सका, तो हम भी साथ खड़े हैं। क्यों? उन्होंने ये देख लिया कि वो शैतान बुजुर्ग तो अपने दोस्तों का साथ छोड़ देता है, ये कौम अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ती। समझ गए ना? एड़ी चोटी का जोर लगा दिया शाम में, खरबों डॉलर खर्च कर दिए शाम में, यमन में, लुबनान में, सब किया नहीं किया। खड़े हैं दोस्त, क्यों? अली वाले हैं, दगा नहीं देते। समझ में आ गई बात? अली वाले कभी दगा देख लिया लोगों ने, कौमों ने देख लिया कि नहीं ये वफादार हैं। और फिर उनको सब कोई राज अब मालूम हुआ, पहले नहीं, अब मालूम हो गया राज के भाई ये मसला है, मसला है। इसीलिए तो अंदर से तोड़ने का गेम हो रहा है कि नहीं मार सकते तो मारो, ये फिर जिंदा हो जाते हैं, मारो फिर जिंदा। एक जनरल मारो 1000 इनके पैदा हो जाते, एक सिपाही मारो 1000 सिपाही पैदा हो जाता। नहीं, डरते नहीं है ना, खौफ नहीं है मौत का। क्यों खौफ का मौत होगा? क्यों मौत का खौफ होगा? क्योंकि मानने वाले उसके हैं जिसने सिखाया यही मौत आनी। अली के शियों एक बात यकीन रखो, कहना और है, मैं यकीन की बात कर रहा हूं। जब तक ये यकीन राशिख पैदा नहीं होगा ना तुम्हारे अंदर कि मौत बरहक है, किसी भी वक्त कहीं भी आ जाए, जिनके साथ 1000 सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं वो भी मर जाते, मरते नहीं, मरते सब मर जाते। जब ये यकीन काबिल हो जाता है फिर इंसान सच बोलता है। क्यों डर किस बात का? अल्लाह की बारगाह में जाना है ना, मर जाएंगे, मौत तो आनी। लेकिन दो तरह की मौत होगी, जिंदगी तो उतनी ही है, या जिल्लत के साथ मरेगा या इज्जत के साथ मरेगा। अभी आपने देख लिया ना, सब मरे, उनके भी मरे, इनके भी मरे, वो जनाजे छुपाते फिर रहे, एक एक करके जाहिर कर रहे हैं। पहले कहते नहीं कुछ नहीं हुआ, फिर कहते नहीं 11 जख्मी हुए, फिर 2 लाशें भेजते, कहते हैं ये अफगानिस्तान से आई है, वहां की नहीं है। कहता उसके अम्मा अब्बा कह रहे हमने तो इराक भेजा था, अफगानिस्तान से कहां से आ रहा है ताबूत में? कहते ये 4 कीनिया से आए, कीनिया वो तो गया था इराक, कीनिया से कहां से आ गई डेड बॉडी? समझ में आ रही है बात? क्यों डर रहे हैं ना, जानते हैं ना, लोगों को जवाब नहीं दे सकते। और जब इधर मारे गए इधर के तो क्या हुआ? कोई खौफ नहीं था, क्योंकि जानते हैं अल्लाह की राह में जान दी है, हुसैन के रास्ते में जान दी है, तो ना हुकूमतें डरी, ना ईरान की हुकूमत, ना ईरान की मत, कोई नहीं डरा। क्यों नहीं डरा? जनाजों को लेकर आए, सड़कों पे लेकर आए, शहर शहर जितनी ज्यारतें तुम करते हो मैं करता हूं, वो सारी ज्यारतें उनको कराई, करोड़ों लोगों ने रुख्सत किया, ये बता के रुख्सत किया कि हलाक हुए तुम्हारे, जिंदा हुए हमारे। समझ में आ गई बात? वो अब हमारे बच्चे बेचारे, जाहिर दिल जलता है बच्चों का, तो वो ऐसी बात करते हो, परेशान भी होते हो, बार बार हमें कह रहे, आप देखिए मीडिया वाले कह रहे हैं हलाक हो गया। मैंने कहा इनके कहने से क्या होता है? इन्हीं ने हुसैन के लिए क्या कहा था? इन्हीं ने अली के लिए क्या कहा? क्यों इन चक्कर में नहीं पढ़ो, अपनी सलाहियत जाहिर ना करो। जमाना बताता है, तारीख बताती है कि कौन हलाक हुआ, कौन शहीद हुआ। ये मीडिया थोड़ी तय करेगा, ये बिकाऊ मीडिया, ये यहूदियों का मीडिया, ये जमीर फरोश, ये दीन फरोश, ये जबान फरोश, सिवाय चंद एक को अलग कर दो, है ना, चंद एक है बेचारे, फिर उनको हटा दिया जाता है जब वो सच बोलते हैं उनको। और जो खुद भी कहते हैं कि भाई हमारे तो मसला ही हो रहा है, हमसे भी कहा कि वो हमारा प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ नशरी हुआ, कहने ये तो आपने सारी उनके फेवर की बात कर दी, तो भाई जो सच है मैंने तो वो कहा है, एक बार एक ने सच कहा, तीसरे दिन देखा बेचारा पलट गया। अभी क्या हुआ, परसों तो कुछ और कह रहा था, आज कुछ और कह रहा है, मालूम वो पॉलिसी नहीं है। क्या है? पॉलिसी मैटर। हमें काहे की परवाह, हमें कोई परवाह नहीं, और आज तो बिल्कुल भी परवाह नहीं। जब उस जमाने में कोई हमारी आवाजों को न दबा सका, बनी उमैया और बनी अब्बास, अगर दबा देते तो करबला पहुंचती कैसे? कामयाब हुए नहीं हुए ना कामयाब हमें दबाने में? तो उस वक्त जब कुछ भी ना था, हमारी आवाज सारे आलम में छा गई, सारे आलम में फैल गई। तो अब तो जो तुमने चीजें ईजाद की हैं, वही तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। फेसबुक का पेज बंद कर दो, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो हमारे बच्चों में माशाल्लाह इतने टेक्निकल बच्चे पैदा हो गए कि उन्होंने अपने अपने सिस्टम खुद ही बना लिए। पूरी उसी से तो परेशान है, चीख रहा है मीडिया के ऊपर, खुद भी गालियां दे रहा है। हमारे मीडिया ने कर दिया, हमारे सोशल मीडिया ने कर दिया। यानी हमारे लिए जो गड़ा खोदा था, ये शैतानी ताकतें, साम्राज्य ताकतें खुद उसमें गिर गई। क्यों? हमारे साथ है दुआए जहरा। इस जुमले पे खत्म कर रहा हूं, कल यहीं से शुरू करूंगा। दुआए जहरा किसके साथ है? हमारे साथ है। हम दुआए जहरा वाले, यकीन रखो कोई तुम्हें नहीं मार सकता, कोई तुम्हें खत्म नहीं कर सकता। मौत, इस जाहिरी मौत को मर जाना कहते हैं? नहीं, इज्जत ही इज्जत है। जहरा और औलादे जहरा के नाम पे जो मौत आ जाए, वो किसी का उधार रखते हैं? अहले बैत किसी का उधार रखेंगे नहीं। इतनी इज्जत दी उसने, एक इंसान इतनी कुर्बानी दी, मकामात मुकद्दसा को आजाद कराया, जंग लड़े, जैनबिया को, सामरा को, बलद सबको आजाद कराया ना। कितनी इज्जत दी जहरा ने उसको, कितनी इज्जत। देखा उसका जनाजा, देखा वो मेहंदी का जनाजा, इज्जत यहां है, ये इज्जत और कहीं नहीं मिलेगी। ये उस बीवी की तरफ से इज्जत है जो हर शिया के बच्चे को अपना बच्चा समझती। सब बच्चों की मां है, शियों के बच्चों की भी मां है। मैं आज सोच कर आया था कि मसाइब तो बीवी के ही पढ़ूंगा, लेकिन इसमें साथ उन बच्चों की मुसीबत शामिल करूंगा कि जिन बच्चों का रोने वाला कोई भी नहीं था। आप जानते हैं ना, जनाबे मुस्लिम के साथ दो बेटे थे, बेटे तो दो करबला में भी शहीद हुए, चार बेटे थे, लेकिन दो बच्चे वो थे जो जिंदान, ऐसे ही है ना, उनको जिंदान में डाल दिया गया। तो जिंदान में डाल के, उस जमाने के जिंदान आज के थोड़े भूल भाल गया, खत्म। कितना अरसा गुजरा नहीं मालूम। मुसैब जाते हैं ना हम ज्यारत करने, मुसैब के इलाके में जगह है, वो नहर भी है, सब चीजें मौजूद हैं। और इस नाचिस को तो ये शरफ मिला कि वो असल कब्रों तक मुझे ले गए नीचे, जहां वो असल कब्रें बनी और जिन पे आज तक वो बेकसी बरस रहे। बनी नहीं है कब्र, लेकिन अजीब सा कैफियत अजीब होती है जब उन असल कब्रों के दर जाओ ना नीचे तहखाने में। अजीब अजीब सा आलम हो जाता है कि इन बच्चों पर क्या गुजरी होगी छोटे छोटे। दोनों ने आपस में तय किया था ना कि आज जब ये आएगा शाम को, एक बार बस आता था खाना लेके शाम, इससे कुछ बात करेंगे। और उसके आने से बच्चों ने नमाज के औकात का तायुन किया हुआ था कि जब ये आता है तो इसके बाद मगरिब होती है, उसके बाद, क्योंकि नीचे तहखाने हैं ना, उस जमाने के जिंदान ऐसे नहीं होते थे, बिल्कुल 20 गज अंदर, 15 गज अंदर, ऐसे जमीन के अंदर होते थे। जब आया तो बच्चों ने रोका, भाई एक बात तो सुन ले, बताओ क्या बात। मोहम्मद अरबी को पहचानता है? मैं मुख्तसर कर रहा हूं, क्यों नहीं पहचानता? रसूलुल्लाह का उसका कलमा पढ़ता हूं, क्यों नहीं पहचाना? जाफर तैयार को पहचानता है? पहचानता हूं। तफसील बताई। अली को पहचानता है? मेरा मौला है, मेरा सैयद है, मेरा सरदार। अली के भाई अकील को भी जानता है? तो बच्चे तुम सब सवाल क्यों कर रहे हो मुझसे? सुन, हम उसी खानदान रिसालत के चश्मो चरा, हम मुस्लिम के यतीम, हम रसूल खुदा के भी पोते हैं, हम अकील के भी पोते हैं, हम अली के भी पोते हैं, हम जाफर के भी। इतना सुनना था, कदमों में गिर पड़ा, बच्चों तुमने मुझे आज तक क्यों नहीं बताया, मुझे माफ कर। बस मैं ये कर सकता हूं कि दरवाजा खोल रहा हूं जिंदान का, शाम होने वाली है, सूरज गुरु हो रहा है, निकल जाओ, जाओ चले जाओ, और जितनी जल्द हो सके कूफे से दूर निकल जाना, क्योंकि मैं तो मार दिया जाऊंगा। लेकिन अगर तुम पकड़े गए तो सारी मेहनत जाया हो जाएगी, निकल जाए। बच्चों ने उसका शुक्रिया अदा किया। जाने लगे तो इसने दामन थाम लिया दोनों बच्चों का, कह देखो बच्चों एक वादा करके जाओ, देखो मैं अब मार दिया जाऊंगा मगर एक वादा करो कि कयामत के दिन मेरी शिफात करो। यानी उसे ये यकीन है कि ये मासूम बच्चे हैं मगर इन्हें भी हक शिफात है, क्योंकि अली और मोहम्मद के घर के बच्चे हैं ना। बच्चों को भी अपनी शिफात का इतना यकीन है कि इसका हाथ थाम कर कहा तुझसे वादा रहा तेरे बगैर जन्नत में कदम नहीं रखे। निकल गए बच्चे, रात भर चलते रहे चलते रहे चलते रहे, रास्ता भटक गए और इस मकाम पर पहुंचे मुसय्यब, 60-70 किलोमीटर जो है ना कूफे से बाहर निकल आए लेकिन इस जगह पहुंचे। और जब सुबह होने लगी, फजर का वक्त हुआ, दोनों शहजादों ने इस नहर के किनारे जोहड़ है, जोहड़ के पास एक दरख्त है, जोहड़ यानी तालाब जैसे जो बने होते नहर के साथ, दरिया के साथ, दरियाए फरात के साथ जोहड़ है, वहां पे इन्होंने दरख्त के नीचे नमाज अदा की और सफेदी नमूदार हो रही है सुबह की। दोनों बच्चों ने तय किया कि सुबह दिन इस दरख्त पे चढ़ के गुजारते हैं, जब रात होगी फिर सफर शुरू करेंगे। दोनों शहजादों ने अपने आप को दरख्त में पत्तों में छुपा लिया। इतने में ज़ौजे हारिस की कनीज पानी भरने के लिए आई। जोहड़ में जब पानी भरने लगी तो सुबह की सफेदी नमूदार हो रही है, सफेदी कह लीजिए उसको, मारा नमूदार हो रही है, देखा कि दो चांद से चेहरों का अक्स पड़ रहा है। हैरत से देखती है दरख्त, मैंने ऐसे हसीन चेहरे पहले कभी नहीं देखे। सिला बच्चों नीचे आओ, मत डरो, तुम किस ममलिकत के शहजादे हो, कहां से आए, खौफ जरूर अमान है तुम्हारे लिए, नीचे आओ। दोनों शहजादे नीचे, कहा मोमिना बस एक एहसान कर दे हम पर, हमें मदीने का रास्ता बता दे। कहा बच्चों मदीने क्यों जाना चाहते हो? कहा मदीने में हमारा चचा हुसैन है, कूफे वालों ने हमारे बाबा मुस्लिम को शहीद कर दिया, कत्ल कर दिया। समझ गई वो बीवी के इन बच्चों को मालूम ही नहीं कि कर्बला में हुआ क्या है, इसने भी कुछ नहीं बताया। कहा कि चलो मेरी मालिकन मुहिब अहले बैत है, मैं तुम्हें लेके चलती हूँ, तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकालेगी और जल्दी जल्दी चलो इससे पहले के आबादियां निकलने गोलो घरों से निकलना शुरू हो जाएं। लेकर आई, ज़ौजे हारिस को मामला बताया कि इन बच्चों को कुछ नहीं मालूम कि कर्बला में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उस मोमिना ने भी कुछ नहीं बताया, खुश हो गए। कहा शहजादो अब तुम अमान में हो, इत्मीनान रखो, कल एक काफिला जाने वाला है, मैं काफिले के साथ तुम्हें मदीने रवाना कर दूंगी। कब से कैद में थे बच्चे? बच्चों को नया लिबास नहलाना धुलाना, नया अपने हाथ से गिजा बना के खिला रही है। जब शाम होने लगी तो एक कोठरी में बंद कर दिया। कहा बच्चों मुझे माफ कर देना लेकिन मेरा शौहर हारिस जो है ना वो इब्ने ज़ियाद के दरबार में मुलाजिम, अब उसके आने का वक्त हो रहा है, मुझे डर है कि इनाम के लालच में तुम्हें कहीं उसके हवाले ना कर दे, लिहाजा रात बस इस कोठरी में गुजार और बाहर से ताला लगा दिया। आज खिलाफ मामूल देर से आया रात हारिस। पूछा मोमिना ने क्यों आज तुझे देर क्यों हुई? कहा मुस्लिम के दोनों बच्चे जिंदान से फरार हो गए और इब्ने ज़ियाद ने बहुत बड़ा इनाम रखा है, सारा दिन उन्हें ढूंढता रहा नहीं मिले। कहा छोड़ उन दो यतीमों का पीछा, क्यों अल्लाह और रसूल की दुश्मनी मोल लेता है। खैर खाना वाना खाया, सोने के लिए लेटा, उधर रात के एक पहर में छोटे शहजादे की आंख खुली। बड़े भाई का शाना हिलाकर कहता है भैया उठो भैया उठो। भाई जब उठा तो कहा भैया मैंने अभी ख्वाब देखा। पूछा बड़े भाई ने क्या ख्वाब देखा? भैया मैंने ख्वाब में रसूल खुदा को देखा, अपने बाबा मुस्लिम को देखा है कि जनाबे मुस्लिम हमारे बाबा मुस्लिम आए हैं हुजूर की खिदमत में। और कहते हैं हुजूर ने पूछा कि मेरे बच्चों को कहां छोड़ आए? एक कलाम इब्राहिम है एक कलाम मोहम्मद है, मोहम्मद और इब्राहिम को कहां छोड़कर आए? तो हमारे बाबा ने रोते रोते कहा है अल्लाह के रसूल जालिम की कैद में छोड़कर आया हूं अपने दोनों बच्चों को। अल्लाह के रसूल ने इत्मीनान दिलाया, मुस्लिम इत्मीनान रखो बस कुछ ही देर में तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास पहुंच जाए। बड़ा भाई कहता है भैया मैंने भी यही ख्वाब देखा। दोनों भाइयों को अपनी शहादत का यकीन हुआ और एक दूसरे से बगल गिर होकर जारो कतार रोना शुरू कर दिया। जब गिरिए की आवाज बुलंद हुई, हारिस मलून की आंख खुली, तलवार उठा के दौड़ा इस कोठरी की तरफ। ये बच्चों के रोने की आवाज कहां से आती है? मोमिना ने चाहा कि ये कह दे कि पड़ोस में किसी के बच्चे रोते हैं, मगर वो नहीं माना। आया, तलवार से कुफल को तोड़ा, ठोकर मार के दरवाजा खोला, अंदर दाखिल हुआ, क्या देखा? दोनों बच्चे एक दूसरे के गले में बाहें डाले रो रहे। बस गुस्से में आगे बढ़ा, ठोकरों से मारना शुरू किया। सारा दिन तुम्हारे लिए जंगल जंगल फिरता रहा, तुम मेरे ही घर में छुपे हुए हो। याद रखिए, इतना मारा है ठोकरों से कि बच्चों के सर से, नाक से, यानी यूं कह लीजिए कि पूरा चेहरा लहू लहान हो गया। कितने ही दंदाने मुबारक तोड़ दिए, रस्सी से बांधा, खेचता हुआ लेकर निकला। गुलाम और बेटे को साथ लेकर तुम्हें जरूर कत्ल करूंगा और तुम्हारे सर लेके अपने जियाद के पास जाऊंगा। घर से लेकर निकला ये मोमिना पीछे पीछे फरियाद करती हुई, मैंने अमान दी थी, मैंने अमान दी थी, इन्हें कत्ल न करना, तुझे जो इनाम चाहिए मैं अपने पास से दूंगी। कान नहीं, मुझे हाकिम की खुशनूदी भी मंजूर है, मैं इन दोनों बच्चों के सर लेकर जाऊंगा। लेकर आया साहिल पर, साहिल पर लाने के बाद गुलाम को हुक्म दिया, इन बच्चों के सर कलम कर। गुलाम आगे बढ़ा, बच्चों ने चेहरा देखकर कहा, क्या बिलाल हबशी की कौम से है? गुलाम ने हैरान होकर पूछा, तुम बिलाल हबशी को कैसे जानते हो? कहा, हमने देखा नहीं, लेकिन हमने सुना है कि हमारे जद रसूल खुदा का मौजिन बिलाल कौम हबशे था। कहता है, तुम खानदान रिसालत के चश्मो चराग? कहा, हाँ, हम अकील के पोते हैं, हम रसूल खुदा के पोते हैं, हम अली मुर्तजा के पोते हैं, हम जाफर तैयार के पोते। इतना सुनना था कि उसने तलवार फेंकी, दौड़ा, नहर में छलांग लगा दी। ये जुल्म नहीं कर सकता, खानदान रिसालत के बच्चों पे तलवार नहीं चला सकता। झुंझला के अपने बेटे को कह दिया, आगे बढ़, इनके सर कलम कर। बेटा आगे बढ़ा, माँ ने चिल्ला कर कहा, खबरदार, अगर आगे बढ़ा, वार किया, दूध नहीं बख्शूंगी। बेटा भी पीछे हट गया। अब ये मलून खुद तलवार लेकर आगे बढ़ा। दोनों शहजादों ने यकीन कर लिया, बस अब शहादत का वक्त आ गया। कहा, ठहर, इतनी इजाजत दे दे के दो रकात नमाज पढ़ ले। बच्चों ने नमाज शुरू की, सजदे की हालत में गए। इस मलून ने पहले बड़े भाई की गर्दन पे तलवार का वार किया। वो मोमिना दरमियान में आ गई कि मत मार बच्चों को। उस मोमिना के शाने पे तलवार लगी, जख्मी होके एक तरफ गिरी। इसने दूसरा वार किया, बड़े बड़े भाई के सर को तन से जुदा किया। अपने साथ एक थैला लाया था, सर को थैले में डाला और जिस्म को नहर के हवाले किया। छोटे भाई ने बड़े भाई के खून में करवटे लेना शुरू की। चिल्ला कर कहता है, भाई मुझे अकेला छोड़कर ना जाना। बस बड़े भाई का जिस्म पानी की सतह पे ठहर गया, बेसर का लाशा ठहर गया। अभी छोटा भाई बड़े भाई के खून में करवटे ले रहा था, इस मलून ने दूसरा वार किया, छोटे भाई का सर भी तन से जुदा किया, सर अपने थैले में डाला, जिस्म को नहर के हवाले किया। दोनों बेसर के लाशे बगलगीर हुए, कहे आप बैठ गए। आखिरी जुमला सुनो, सुबह हुई, गांव के लोग निकले, आबादी के लोग निकले खेतों में काम करने के लिए। क्या देखा? साहिल के किनारे पे कोई बीवी बैठी है, सर से पैर तक सियाह चादर में, जारो कतार रो रही है। ये किसान रुक गए, रुक कर पूछते, बीबी क्या आपका कोई कीमती सामान गिर गया नहर में, हम निकाल दें? वो बीबी कहती है, हाँ हाँ, हारिस मलून ने मेरे बच्चों को कत्ल करके फेंक दिया, मेरी मदद करो, मेरे बच्चों के लाशें निकालो। ये किसान नहर में उतरे, दोनों बच्चों के लाशें निकाले साहिल पर। क्या देखा इन्हीं ने कि ये बीबी दोनों बच्चों के दरमियान में बैठ गई। कभी सर एक के सीने पे रख के रोती है, कभी दूसरे के सीने पे रख के सर रोती है। इन किसानों से कहती है, तुमने मेरी मदद की, मेरे बच्चों के लाशें निकाले, इत्मीनान रखो, मैं कयामत के दिन तुम्हारी शिफात करूंगी। हैरान होकर कहते हैं किसान केबीबी आप हैं कौन जो इतने इत्मीनान से हमें जन्नत की बशारत दे रही हैं। नजरों से ओझल होने से पहले उस बीबी ने इतना कहा, मैं कोई और नहीं तुम्हारे रसूल की बेटी फातिमा हूं और ये मेरे मुस्लिम के यतीम है। अब समझ में आया, अब सुनो मैंने ये क्यों पढ़ा, ये बताओ कि जब अली अकबर घोड़े से गिरे फातिमा मौजूद थी या नहीं, अब्बास गिरे फातिमा थी या नहीं, कासिम गिरे फातिमा थी या नहीं, असगर के गले में तीर लगा फातिमा थी या नहीं, हुसैन का सर तन से जुदा हुआ माँ थी के नहीं थी, सकीना काफिले से बिछड़ी माँ थी के नहीं थी, तो कैसे हो सकता है करबला में हर एक के लाशे पर आए और मुस्लिम के यतीमों को रो रहे थे। लानतुल्लाह अलल कौमिल ज़ालिम وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بار الہ بحق محمد وآل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے، اپنی آیات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کر، دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشر فرما، بیمار ہیں بہت سارے مومنین ہمارے غلام حسین صاحب بیمار ہیں ان کو اٹیک ہوا ہے فالج کا، سب مریضوں کو شامل کر کے دعا کریں بہت بیمار کربلا سب کو صحت کاملہ و عاجلہ تھا، جو اسیر ہیں لاپتہ ہیں بہت اسیران کربلا خیر سے اپنے گھروں تک واپس پہنچ جائیں، معبود تمام مومنین کی جائز حاجات کو پورا فرما دے، کسی کو خالی ہاتھ نہ، تجھے ذکر کا واسطہ، تجھے زہرا اولاد زہرا کا واسطہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد دے دے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار دے دے، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، بار الہ ہماری ملت میں اتحاد اتفاق الفت اور محبت پیدا کر، معبود ہم اس قابل نہیں اس قابل بنا دے جب تیری آخری عزت کا ظہور ہو ہم اس کے ادنا سے سپاہی ہم شامل، تاجیل فرما ظہور امام زمانہ، میں آپ سے درخواست کروں گا مرحوم سید جعفر حسین زیدی، ان کے صاحبزادے مرحوم سید سپتین جعفر زیدی اور اسی خاندان کے دیگر مرحومین کو شامل کر کے، اپنے مرحومین اور تمام شہداء کو شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ تین بار سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں۔